പുരുഷത്തേ ചരണാരവിന്ദം. ബഹുത് ബഡിയ ലേഖ്. ഏക ക്ഷണ മേ ഹമാരി സ്ഥിതി കൈസേ ബദലേ, യേ ഹംസെ കൽ പ്രശ്ന കിയാ ഥാ വോ ബാക്കി രഹ ഗയാ. एक क्षण में ही परिवर्तन हो जाए, एक साथ श्रद्धा बढ़ जाए, इसका क्या उपाय है? तो इसका उत्तर है, एक बार कोई भगत तुलसीदास जी से मिलने गया, बड़े नम्रता से हाथ जोड़ करके उनके चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा कि महाराज भगवान के तत्काल दर्शन कराओ. तत्काल दर्शन कैसे होते हैं? उस व्यक्ति को देख करके तुलसीदास जी ने सोचा कि क्या जवाब दूं, तो बोले कि देखो एक पेड़ के नीचे जाओ, एक पेड़ के नीचे एक बरछी को गाड़ दो, कुल्हाड़ी हो और उस पेड़ के ऊपर से कूद जाओ, बरछी के ऊपर कूद जाओ और ऐसे कूदो कि वो बरछी तुम्हारे सिर में लगे हो, तुमको भगवान मिल जाएंगे. वो रवाना हो गया. एक वृक्ष के नीचे उसने बरछी गाड़ दी, वृक्ष के ऊपर चढ़ भी गया, वहां बैठ करके सोचने लगा कि यदि मेरा सिर फूट भी गया, कट भी गया और भगवान नहीं मिले तो फिर क्या होगा? इधर से भी गए, उधर से भी गए. वो नीचे उतर गया. फिर मन में आया कि जब बर्छी गाड़ी दी तो चलो वापस पेड़ पर. फिर वो पेड़ पर चढ़ा, फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई तो फिर नीचे आया. ऐसे वो ऊपर नीचे गया तो एक आदमी दूर से देख रहा था. वो पास में आकर कहने लगा कि भाई क्या बात है, तुम बार बार ऊपर चढ़ते हो, नीचे उतरते हो और ये बर्छी नीचे गाड़ रखी है, ऐसे रख रखी है, बात क्या है? तो वो बोला कि क्या तुम तुलसीदास जी को जानते? अरे तुलसीदास जी, तुमने तुलसीदास जी का नाम सुना है? अरे नाम क्या सुना है, मेरे हृदय में उनके प्रति अपार श्रद्धा है. क्या तुमने तुलसीदास जी के दर्शन किए? अरे वहीं से तो आ रहा हूं. तुमने तुलसीदास जी के दर्शन किए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे तूने तुलसीदास जी के दर्शन किए, अरे मेरे लिए तो तू ही तुलसीदास जी हो गया. तुलसीदास जी के दर्शन किए, उसके पैरों में पड़ गया, कहने लगा अब बताओ क्या बात है, आप बार बार पेड़ के ऊपर से जा रहे हो, पेड़ के ऊपर चढ़ते हो, नीचे उतरते हो, ये बर्छी तुमने नीचे गाड़ रखी, बात क्या है? तो कहा कि आज मैं तुलसीदास जी के पास गया, उनसे मैंने पूछा कि भगवान के एक क्षण में मिलने का उपाय बताओ, तत्काल मिलने का उपाय बताओ. कोई लंबा चौड़ा जब बता दोगे, एक करोड़ नाम जप करो कि तीन करोड़ करो कि ये करो वो, मेरे तत्काल होना चाहिए, तत्काल. तो उन्होंने कहा कि तत्काल यदि भगवान की प्राप्ति करनी हो, भगवान से मिलना हो, तो पेड़ के नीचे एक बर्छी गाड़ दो और उसके ऊपर कूद जाओ, भगवान मिल जाएंगे. अब मैंने बर्छी भी गाड़ दी, मैं पेड़ पर भी चढ़ गया, पर क्या करूं, भगवान यदि नहीं मिले तो मैं मर भी जाऊंगा और भगवान भी नहीं मिलेंगे. इस दुविधा में फंस गया उसने देखा कि अरे महात्मा के वचनों का ये अर्थ जानता ही नहीं है। उस राहगीर ने कहा अच्छा एक काम करो, क्या ये जो तुलसीदास जी ने तुमको उपाय बताया है ना, ये मेरे को बेच दो। देखो मेरे थैली में बहुत सा रुपया है, मैं कोई व्यापार करने जा रहा था, लेकिन तुमने तुलसीदास जी के दर्शन किए, उनके वचन सुने, तो अब ये वचन मुझे बेच दो। और ये देख मेरे पास मोहरों से भरा हुआ थैला, ये तुम ले लो। उसके मुंह में पानी आ गया, उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ, मरने से भी बचे और मोरों का थैला यूं ही मिल गया, बेच दिया। इधर वो चटपट चटपट वृक्ष पर चढ़ा, राहगीर आया ना वो बेचने वाला, वो बेचने वाला नहीं खरीदने वाला, चट चट चढ़ा और चढ़ करके जो ही वो यूं कूदने वाला था, क्यों ही भगवान ने उसको वहीं पकड़ लिया। और पकड़ करके उसको अपने छाती से लगा रहे, तेरे जैसे भगवान पर, मेरे पर और संत पर श्रद्धा रखने वाले ऐसे मर जाएंगे तो फिर मेरी भक्ति का क्या होगा। अब जिसने वो नाम बेचा था, माने ये बात बेची थी, वो बहुत पश्चाताप करने लगा। अरे महात्मा मिले, महात्मा के वचन पर मैंने विश्वास भी नहीं किया, बड़ी दिक्कत हो गई। ऐसे भाई महात्मा के वचनों पर हमारे विश्वास की कमी है, बात तो पूछते हैं परंतु उस बात पर हम विश्वास नहीं रखते हैं। महात्मा लोग अपने हृदय की बात बता भी देते हैं, पर हम लोग यदि माने नहीं, श्रद्धा नहीं करें तो उसका क्या होगा। ऐसी एक बात और आती है, नाना जी बाहर गए और अपने दोईते को 3 दिन की पूजा संभला गए कि देख बेटा ये 3 दिन तक तुमको ठाकुर जी की पूजा करनी है, और देखो भगवान के भोग लगा कर ही खाना, ऐसे भोजन मत करना। नाना जी चले गए, भगवान ने भोग नहीं खाया, उसने भोग लगाया और भगवान ने नहीं खाया। लड़के ने देखा कि नाना जी कह के गए हैं कि भगवान के भोग लगाना और फिर भोजन करना, अब मैंने भोजन कर दी रख दिया और भगवान ने तो खाया ही नहीं, और भूखे मर जाएंगे। भगवान ने नहीं खाया तो मैं कैसे भोजन करूं, तो भूखे मर जाएंगे, तो भूख से तो नहीं मरना है, ऐसे भूख से तो नहीं मरना है, छुर्रा खाकर मर जाना ठीक है। तो उसने एक छुर्रा लिया और वो पेट में डालने के लिए जो ही तैयार हुआ तो भगवान आकर के उसका हाथ पकड़ लिए। उस दोहिते ने पूछा हे भगवान, मैंने आपको प्रेम से भोग लगाया, वो तो खाने आए नहीं, और जब मैं मरने चला छुर्रा खाने लगा उस समय आप प्रकट हुए, इसका क्या रहस्य है। भगवान कहने लगे कि देखो उस समय तुम्हारे मन में मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं थी, तुमने सोचा कि चलो नाना जी लगाते हैं ऐसे अपने भी भोग लगाओ, तो तुम उस समय में पूर्ण श्रद्धा में नहीं थे, लेकिन अब तुमने मेरे भोग लगाए बिना जीना भी अच्छा नहीं समझा, तुम्हें प्रकट हो गया। ऐसे बहुत से दृष्टांत आते हैं जल्दी भगवान मिलने के। हम आप लोगों को एक बात कहते हैं, महात्मा और ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी लाभ होता है, हमको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हम ईश्वर की और महात्मा की कृपा को जितना बटोर सकें उतना बटोरें। उत्तंक नाम का एक ऋषि था, भगवान ने उस पर कृपा की, भगवान ने उसे समझाया, अपना प्रभाव दिखाया। उसकी भगवान में श्रद्धा नहीं थी, भगवान ने कहा तब भी नहीं माना, कहा कि नहीं मैं विश्व रूप देखना चाहता हूं, नहीं तो श्राप दे दूंगा। भगवान ने कहा रे क्यों तुम दूसरों की नकल करते हो, विश्व रूप अर्जुन को दिखाया तो भक्ति थी, प्रेम था, तब दिखाया। तुम मेरी परीक्षा के लिए पूछते हो कि विश्व रूप दिखाओ तो मैं जानूं, ऐसे परीक्षा मत ले, श्राप दे दूंगा। अब भगवान के श्राप कहां लगता, भगवान ने देखा कि बेचारा ऋषि इतने वर्षों से तपस्या करता है और न जाने मेरे में अविश्वास करने से कितना जन्म और लग जाएगा। भगवान ने कृपा करके उसको विश्व रूप के दर्शन करा दिए, तब श्रद्धा हो गई। ये उत्तंक ऋषि धार्मिक पुरुष था, तपस्या भी करता था, पापी था नहीं, लेकिन श्रद्धा की कमी से उसको भी समय लग गया। आजकल के जमाने में हमने सुना है, रामकृष्ण परमहंस की बात सुनी है, ये जो विवेकानंद थे ये बड़े नास्तिक थे ऐसा सुना, ये इन बातों में श्रद्धा नहीं रखते थे। परंतु रामकृष्ण परमहंस की कृपा से विवेकानंद उच्च कोटि के विचारक बन गए। गौरांग महाप्रभु ने बहुतों को ऐसी कृपा से तार दिया, जगाई मगाई धोबी, ये कितने नीचे थे, तत्काल इनको भगवान का भक्त बना दिया। वेश्या हरिदास को बिगाड़ने के लिए आई, लेकिन वही वेश्या भगवान की भक्त बन गई। देखो हम लोगों में यदि भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाए तो बहुत जल्दी हमारा उद्धार हो सकता है। अहंकार के कारण से हम लोग श्रद्धा नहीं करते हैं। केनोपनिषद में आता है वायु अग्नि और इंद्र ने अभिमान किया, फिर इंद्र को भगवान ने उपदेश दिया, फिर अहंकार का नाश हुआ, तब उसकी भगवान में श्रद्धा हुई। ऐसे ही अग्नि और इंद्र ने भी भगवान को श्रद्धा करने के बाद ही जान पाया। भगवान स्वयं दया करके प्रकट होकर के इंद्र को अग्नि को और वायु को ज्ञान दिए, ये तो कानून की बात है। भगवान जब चाहे विशेष दया कर सकते हैं। हनुमान जी की भगवान से भेंट हुई, ब्राह्मण रूप लेकर आए, राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे, देखो लक्ष्मण ये ब्रह्मचारी विद्वान है, इसने इतनी बातें की है लेकिन व्याकरण की दृष्टि से कोई अशुद्धि नहीं आई। भगवान के साथ बात करते करते हनुमान जी का भाव बदल गया, श्रद्धा हो गई और वो अपने असली रूप में आ गए। बाली पर विशेष दया हुई। बाली ने कहा धर्म हेतु अवतरे गोसाई और मारे उमोई व्याधि की नाई। कितनी अश्रद्धा थी उसकी, आप धर्म के लिए अवतार लिए हो और एक शिकारी की तरह से छिप करके मुझे मारा है, ये कोई श्रद्धा की बात थोड़ी, ये तो उलाना है। बाली ने बहुत जवाब सवाल किया। बाली तो यहां तक बोलता है कि राम यदि तुम मेरे सामने आकर युद्ध करते तो मैं तुमको यमलोक भेज देता। तुम धर्म से नीति से युक्ति से किसी भी प्रकार से मेरे धर्म के सामने मेरे वचनों के सामने टिक नहीं सकते हो, ऐसे करके राम जी की बहुत निंदा की। भगवान में तो बाली की श्रद्धा विश्वास का नामो निशान नहीं था। भगवान ने छिपे हुए शब्दों में उसको अपना प्रभाव दिखा दिया। थोड़े बोले, प्रभावकारी बोले, पहचान गया। और ऐसी श्रद्धा हुई, क्षण भर में श्रद्धा हुई और कहने लगा, प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तौर, अभी मैं पापी रह गया क्या? अंतकाल में आपके दर्शन हो रहे हैं, आपका बाण लगने से मैं तो आपके साथ मिल गया हूं। ऐसे करके ऐसी श्रद्धा हुई तो भगवान को कहना पड़ा कि मैं तेरे को जिला दूं। भगवान अपनी बात भी भूल गए। जो भगवान पापियों को मारने के लिए आते हैं और जो भगवान बाली का अन्याय और पाप गिनाते हैं, वे ही भगवान उसको जिलाने की बात बोलने लग गए। ये सब भगवान की कृपा है। बाली के पास जो युक्तियां थी, भगवान ठीक से जवाब नहीं देते, दे नहीं सके। भगवान को जवाब देने की इच्छा नहीं थी, भगवान तो उसका उद्धार करना चाहते थे। महात्मा की विशेष कृपा की बात बताते हैं। हमें तो गौरांग महाप्रभु का उदाहरण मिलता है। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद पर कृपा की, वो नास्तिक था। ऐसे ही हरिदास की कृपा वेश्या पर हुई। पिंगला वेश्या थी, वो दत्तात्रेय जी के दर्शन मात्र से बदल गई, भगवत प्राप्ति हो गई। महात्माओं के दर्शन से, स्पर्श से बहुतों की क्रिया बदल गई और श्रद्धा होकर भगवान की प्राप्ति हो गई। पुराणों में जाजली तुलाधार वेश्य की बात आती है। जाजली की तुलाधार में कोई श्रद्धा नहीं थी, खूब बातचीत भी हुई लेकिन श्रद्धा नहीं हुई, प्रभाव देखकर श्रद्धा हुई। जड़ भरत जी को भी रहुगण एक मामूली मोटा ताजा आदमी समझ करके रथ में जोत दिया, पालकी में जोत दिया। लेकिन जड़ भरत जी की थोड़ी सी बात सुनी, क्षण भर में श्रद्धा बदल गई। महात्मा ने आकाशवाणी से कहा, इन्होंने मेरे दर्शन भाषण स्पर्श किया, उनका उद्धार हो जाए, तो पापियों का उद्धार हो गया। दुर्वासा जी ने अम्बरीश का प्रभाव देखा तो दुर्वासा जी की भगवान की भक्ति में श्रद्धा हो गई। महात्माओं के गुण, प्रभाव, प्रेम की बातें सुननी, आज्ञा पालन करना, इससे श्रद्धा पैदा होती है। सत्यकाम जाबाल ने आज्ञा पालन की। पहले श्रद्धा कम होने से आज्ञा पालन से फिर बढ़ गई। ईश्वर और भगवान की कृपा से, इनके संग से, दर्शन से श्रद्धा बढ़ जाती है। श्रद्धा कोई पहले से ही हो ऐसी बात नहीं है, महात्माओं के और भगवान के साथ मिलते रहने से श्रद्धा बढ़ जाती है। इनमें महात्माओं में संग करने से भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, इसलिए महात्माओं की सेवा करने से, उनका संग करने से महात्माओं में श्रद्धा बढ़ती है और महात्माओं की श्रद्धा से भगवान में श्रद्धा बढ़ती है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। भगवान ने भी कहा, अर्जुन तुम श्रेष्ठ महापुरुषों के पास, तत्वदर्शी महात्माओं के पास जाओ, वे तुमको उपदेश देंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही 13वें अध्याय में कहते हैं कि जो ज्ञान योग भक्ति योग कुछ नहीं जानते लेकिन महात्माओं की बात को बड़े प्रेम से सुनकर के धारण करते हैं, इतने में उनका उद्धार हो जाता है। आज्ञा पालन से श्रद्धा होना ये तो सामान्य बात है, आज्ञा पालन से श्रद्धा होना तो सामान्य बात है, तो बहुत सीधी सादी बात है, डंके की चोट बात है। श्रद्धा होने में, श्रद्धा की वृद्धि में भी सहायक होती है। स्वामी जी महाराज ने प्रश्न किया, अनुकूल बन जाए, कठपुतली बन जाए तो क्षण में काम हो सकता है? सेठ जी ने कहा, उद्धव जी ने आकर कहा, आपने मुझे गोपियों को योग सिखाने के लिए नहीं अभी तो उनसे प्रेम सीखने के लिए भेजा था, अब मुझे तो अब गोपियों की चरण धूली मिलती रहे, भगवान ने क्या सिखलाया कि भक्तों की चरण धूली से ही कल्याण होता है। कितनी बातें ऐसी हैं जिनको घुमा फिराकर कहा जाता है, मूल में बात श्रद्धा पर टिकती है। अपने मन का पाजीपना ये बहुत बड़ी भारी बाधा देता है। महात्माओं की आज्ञा माने उद्देश्य का पालन करना उनकी सबसे बड़ी सेवा है। मानसिक सेवा, मानसिक प्रणाम ये ज्यादा दामी बात है। आज्ञा पालन करना, संकेत इशारे के अनुसार चलना ये परम सेवा है। लेकिन मन में आलस्य आता है, पाजीपना आता है, भोगों की रुचि होती है, काम क्रोध लोभ में फंसते हैं, ये बड़े भारी विकट मार्ग हैं। यदि इसमें फंस गए हो तो आर्त होकर भगवान से पुकारो, प्रार्थना करो, हृदय से प्रार्थना करो, हे भगवान मैं इस मार्ग में भटक गया हूं, मुझे कोई रास्ता सूझता नहीं है, भगवान कृपा करो। ऐसी कृपा की बात भगवान के यहां व्यर्थ नहीं जाती है। शरण होकर, अनुकूल होकर प्रार्थना करो। भीतर में ऊंचा भाव नहीं हो तो ऊंचे भाव के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि आपके मन में ऊंचा भाव होगा तो ऊंची क्रिया अपने आप हो जाएगी। महात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से क्या नहीं हो सकता, सब हो सकता है। हमारा तो ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि हमको चारों तरफ भगवान की कृपा ही कृपा दिखे। जैसे डूबने वाले व्यक्ति को आगे पीछे नीचे ऊपर दाएं बाएं ये सब केवल पानी पानी दिखता हो, ऐसे हमको भगवान की कृपा ही कृपा दिखनी चाहिए। ये बात तो आप लोगों के स्वयं के पैदा हो तब विशेष बात बने, उसकी गरज हो तब, ये बात बुद्धि में स्वयं ही पैदा हो तब ठीक है। अपने अंदर गरज होगी भगवान की और संतों की कृपा की तो अपने आप पैदा हो जाएगी। मक्खन कोमल है, थोड़े ताप से तप जाता है, महात्मा का हृदय तो उससे भी ज्यादा कोमल है। आते हैं वो महात्मा की तरफ में कोई कमी नहीं है, और भगवान का हृदय तो महात्मा के हृदय से भी ज्यादा कोमल है, और ज्यादा कोमल है। उस हृदय की तो कोई बात कह ही नहीं सकते हैं। छोटा बच्चा है, झूठा भी रोता है तो भी माँ बाप उसका ख्याल तो करते हैं कि देखे कैसा रो रहा है। झूठे ही रोता है, नाटक करता है तो देखते तो है ही ना। ऐसे ही अपने हृदय में व्याकुलता हो और सच्चा रोना आ जाए फिर देखो कितनी बड़ी बात है। जोर की इच्छा होनी चाहिए। जैसे भूखा आदमी होता है वो ये नहीं देखता कि हमारे लिए लड्डू पेड़ा लाओ, भूखे आदमी को तो एक ही बात ही, मुझे कुछ खाने के लिए दो, चाहे जैसे ही दो। ऐसे ही हमारे मन में जोर से इच्छा होनी चाहिए, निर्गुण सगुण साकार निराकार राम कृष्ण शिव जो भी है उन भगवान से हमको मिलना है, हमको मिलना है। प्यासा आदमी पानी के लिए खुद चेष्टा करता है, भूखा आदमी स्वयं भूख के लिए चेष्टा करता, भूख को दूर करने की चेष्टा करता है। ऐसे हमारे मन में भूख होनी चाहिए और उसके अनुसार चेष्टा होनी चाहिए। वहां महात्मा की और भगवान की कृपा अपने आप हो जाएगी। कोई धनी आदमी है और दयालु है और उसके पास कोई जाकर के याचना करे कि मैं बहुत संकट में पड़ा हुआ हूं, बीमारी का पैसा भी मेरे पास नहीं है, इलाज करना बहुत जरूरी है, शरीर चला जाएगा, तो ऐसा कौन सा धनी आदमी है जो दयालु होकर उसकी सहायता नहीं करेगा, उसको सहायता करने में क्या देरी लगे। ऐसे ही भगवान और महात्मा संसार से दुखी होता है उसको तत्काल दुख दूर करने में लग जाते हैं। एक आदमी ने महात्मा से कहा, मुझे बहुत भारी इच्छा है, क्षण क्षण भी भारी हो रहा है। महात्मा ने कहा, ऐसी बात है नहीं, तू ऊपर से ही बोलता है। यदि तुम्हारे मन में भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा होती और एक एक क्षण तुम्हारे लिए भारी होता तो भगवान तुमको मिल जाते। वो बोला, नहीं महाराज, मुझे तो बहुत जल्दी चाहिए, क्षण भर में मिलना चाहिए। अच्छी बात है, तो मेरे साथ चलो। कि चलो महाराज। महात्मा जी तालाब के किनारे ले गए, तालाब में नहाने लगे कि तुम भी आओ तालाब में। वो भी आया, वो आदमी तैरना जानता नहीं था। महात्मा जी से कहा, महाराज मैं तैरना जानता नहीं हूं, कि मैंने तुमसे कब पूछा कि तुम तैरना जानते हो कि नहीं जानते हो, मैं तो कहता था कि तुम मेरे पास आओ। वो धीरे धीरे आए, महात्मा ने जल्दी आओ, वो आया और वो डूबने लगा। तो महात्मा जी ने जाकर उसका गर्दन पकड़े नीचे डुबो दिया और डूबने वाले डुबो आए, वो तड़पने लगा। महा बचाओ, बोले क्या हो घूम रहे, बचाओ, एक बार बोल, डुबाया भाई महात्मा जी ने। वो तड़पड़ाने लगा, महात्मा जी ने उसकी गर्दन पकड़ी, बाहर फेंक दिया उसको। कैसा लगा? कि बड़ी घबराहट हुई। कैसी घबराहट हुई भगवान के बिना? कैसी तो नहीं हुई। तो ऐसी नहीं हुई तो भाई फिर भगवान के लिए मैं बेचैन हूं, ये तुम क्यों सोचते हो? देखो ये संसार रूपी समुद्र है, इसमें भगवान के बिना तुम लोग डूब रहे हो, इसलिए निकालने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। राजा जनक ने एक क्षण में ज्ञान करा देने की घोषणा की, कहा कि जो एक क्षण में मुझे भगवान के दर्शन नहीं कराएगा, तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देगा, मैं उसको कैद कर दूंगा और उसके बाद उनको सबका वध कर दूंगा। सब लोग घबराए, कई ब्राह्मण आए, बोलो साहब एक क्षण में, एक क्षण के अंदर हमको तत्व ज्ञान होना चाहिए, कि ऐसे कैसे होगा, एक क्षण में कैसे हो जाएगा, इसके लिए तो कितना ही नाम जप करना पड़ेगा जो है इसमें संयम करना पड़ेगा, कितना ही आपको और भी करना पड़ेगा। कि नहीं, हमको तो एक क्षण में तत्व ज्ञान चाहिए, तो आए कैद खाने में डाल दिया। अष्टावक्र जी को पता चला, अष्टावक्र जी आए, राजा ने बड़ा स्वागत किया कि महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हो, मैं आपसे तो एक क्षण के लिए भी नहीं कह सकता, आपके लिए तो कहता हूं कि घोड़े के एक पागड़े में पैर हो और दूसरे पागड़े तक मैं पैर ले चलूं, इतने में मुझे तत्व ज्ञान होना चाहिए। अरे क्या बात करते हो, इतना समय लगता है तत्व ज्ञान में? अष्टावक्र जी बोले, इतना समय लगता है, तुमने तो बहुत देरी की बात कर दी, इतनी देर में तो तीन आदमियों को ब्रह्म ज्ञान करा सकता हूं। राजा ने एक चुप हो गया, आश्चर्य देखा, महाराज तो तीन को छोड़ो, आप मुझे एक को ही करा दो। हाँ अभी करा दे, तो कराओ महाराज। तुम ऐसा करो, अपने मन को मुट्ठी में भस्म करो, अपने मुट्ठी में मन को पकड़ लो, राजा जनक जी स्तब्ध रह गए। महाराज ये मन कभी मुट्ठी में आ सकता है क्या? तो भाई तुम्हारे मुट्ठी में मन नहीं आ सकता, तो तुम्हारे बुद्धि में तत्व ज्ञान कैसे आ सकता है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि है मुट्ठी के समान छोटी और तत्व ज्ञान है मन के समान बड़ा, तो कैसे प्राप्त होगा? अष्टावक्र जी की बात का अर्थ समझ गए कि तत्व ज्ञान का तो ज्ञान ही होता है, प्राप्ति नहीं होती है। प्राप्ति तो उसकी होती है जो पहले प्राप्त न हो, वो तो पहले से ही प्राप्त है। अष्टावक्र जी की बात सुनकर के राजा जनक गदगद हो गए। तो भाई ऐसे ऐसे महात्माओं की बातों को सुनकर के हमारे मन में विश्वास आना चाहिए कि भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता है। हमको सत्संग करना चाहिए। अरे कोई आदमी आग में जल रहा हो, आप उसको जानते ही नहीं हो, आप रास्ते चल रहे हैं और उधर आग लगी और कोई चिल्ला रहा है त्राहिमाम त्राहिमाम, तो आप लोग सब काम छोड़ करके और थोड़ा दुख भी सह करके उसको बचाने की चेष्टा करोगे कि नहीं करोगे? आपके मन में भी जब दया का भाव ऐसा है, फिर महात्मा और भगवान के सामने कोई कहे कि त्राहिमाम मैं संसार में बड़ा दुखी हो गया, उद्धार करो महाराज, उस समय महात्मा का चित्त जब पिघलता है, भगवान का चित्त पिघलता है, उससे कल्याण होता है। इसलिए आर्थ भाव से भगवान से प्रार्थना करो, सत्संग करो, संतों की बात मानो। केवल मुंह में तो इच्छा है पर हृदय में इच्छा नहीं है। पोल निकाल दी हमारी, पोल बता दी। मुंह में तो इच्छा, कहने के लिए तो कहते हैं हमें परमात्मा की इच्छा है, पर हृदय में इच्छा नहीं है। इसलिए हृदय की इच्छा होनी चाहिए। ये बहुत मार्मिक प्रवचन है।